निक ने अपने कमरे में था और गुस्से से पूरी तरह तप रहा था। वो प्रियल को अपने दिल के एक कोने में जगह दे चुका था, जो भले ही अभी ज्यादा ना हो, लेकिन उसके लिए ये काफी था। प्रियल को लेकर ऐसा कुछ होगा वो इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। अचानक उसकी सच्चाई सामने आने से उसने खुद को टूटते हुए महसूस किया। वो बेड से खड़ा हुआ और गुस्से में लैपटॉप उठाकर फेंक दिया। एमा और अंकित उसके दिल की हालत अच्छे से समझ रहे थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, उनका कॉन्टैक्ट टूट गया। निक ने गुस्से में लैपटॉप को फेंकने के बाद तुरंत बाहर का रास्ता पकड़ा और एक गाड़ी में जाकर बैठ गया। बैठने के बाद वो कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहा। इसके बाद उसने गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ा ली। एमा बाकी लोगों के साथ अभी भी कॉन्टैक्ट में थी। मुझे लगा ही था ये लड़की ठीक नहीं है, मेरा सिक्स सेंस मुझे चीख चीख कर ये बात कह रहा था। तभी हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाए, ये हमारी हर एक बात उस दत्ता तक पहुंचाती थी। दोनों ने होशियारी से काम किया। हाँ, इस दुनिया में किसी पर भी किसी तरह का यकीन नहीं किया जा सकता। अंकित को ये बात पसंद नहीं आई। बिना सोचे समझे किसी को जज करना गलत है, हमें पता नहीं प्रियल के पीछे की सच्चाई क्या है। एमा ने उसके बात सुनते ही तुरंत रिस्पॉन्स किया। ओ रियली? वो यहाँ जासूसी कर रही थी, अपने बाप को सब कुछ बता रही थी, फिर भी तुम उसकी साइड ले रहे हो? इससे ज्यादा प्रियल की सच्चाई तुम्हें और क्या देखनी है? एवा भी गुस्से में थी। अभी जो हालात बन रहे थे उसे कैसे निपटा जाए, उसे भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वहीं निक भी पता नहीं आगे क्या कर रहा होगा, इस बारे में वो नहीं जानती थी। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है निक, हम उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे डर है कहीं वो प्रियल से बात करने के लिए निकल ना गया हो। अगर ऐसा हुआ तो निक को रोकना आसान नहीं रहने वाला। वो जिद्दी है और उसकी जिद का कोई तोड़ नहीं। मुझे लगता है कि हम जैन को कॉल करके सब बता देना चाहिए। एक वही है जो निक को रोक सकता है। छोटा भाई होने के कारण निक उसकी हर एक बात मानता है। निक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। वो बस और बस गुस्से में गाड़ी चलाए जा रहा था। निक की आंखों से आंसू निकल आए थे। ये आंसू कैसे आए थे ये बात भी उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। निक अपने आंसू साफ करते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, कौन हो तुम? क्या किया यार? इतने सालों बाद कोई मुझे अपना लगा था और तुम अपने बाप के लिए हम सबको धोखा दे रही थी। तुम हमारी जासूसी कर रही थी। मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा मगर तुमने एक बार भी नहीं बताया तुम प्रभास दत्ता की बेटी हो। मैंने तुम्हें बस अभी समझना शुरू ही किया था, लेकिन तुम तो पहले से ही बहुत समझदार निकले प्रियल। वो तुम्हारी भोली जैसी हरकतें, वो मासूमियत, सब एक झूठ, एक दिखावा थी। तुमने एक अच्छे खासे इंसान को बेवकूफ बना दिया। निक को प्रियल के साथ बिताए हुए हर मोमेंट्स याद आने लगे। वो उसकी शक्ल को बार बार अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसके कानों में प्रियल की आवाज गूंज रही थी। वो ना तो उसकी शक्ल देखना चाहता था ना ही उसकी आवाज सुनना चाहता था, मगर सब जबरदस्ती हो रहा था। निक को याद आया जब प्रियल को उसने पहली बार देखा था, जब प्रियल ने आर्चरी फील्ड का सामान लेट होने पर उसके साथ मार्केट घूमा था। वहां उसे टेडी बियर पसंद आया था और उसने वो टेडी बियर उसके लिए लिया था। निक सिर्फ टेडी बियर वाले दृश्य को याद करते हुए कहा, प्रियल मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को तोहफा नहीं दिया, मगर तुम्हारी मासूमियत को देखकर मेरा, भले ही वो गिफ्ट तुमने पसंद किया था, मगर तुम्हारी मासूमियत को देखकर मेरा मन तुम्हें उसे देने के लिए किया था। क्या वो मासूमियत, तुम्हारा वो बचपना, वो सब झूठ था? क्यों प्रियल, क्यों तोड़ दिया तुमने मुझे, मेरे इमोशन, तुमने मेरी हर एक चीज को किनारे कर दिया। निक की आंखों से बेतहाशा आंसू आ रहे थे। वो उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तभी जैन बाइक पर उसकी कार का पीछा करते हुए दिखा। बाइक पर एक डिवाइस लगा हुआ था जो निक की लोकेशन उसे बता रहा था। निक की गाड़ी की लोकेशन देखकर ही वो उसके पीछे पहुंचा था। जैन ने दूर से चिल्लाते हुए निक को रोकने की कोशिश की, लेकिन निक उसकी आवाज को नहीं सुन पाया। निक ने जैन की आवाज नहीं सुनी तो वो अपनी बाइक उसकी कार के सामने ले गया। निक ने अचानक से जैन को देखा तो उसने ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने के बाद निक गुस्से में बाहर निकल कर आया और जैन से बोला, आर यू मैड जैन? कुछ हो जाता तो तुम आगे एली की मौत का दुख कम है जो तुम खुद भी उसकी तरह मुझसे दूर होना चाहते हो? जैन बाइक से उतरा और उसके पास आया। भाई मेरी छोड़ो, आपको क्या हुआ है? आप इतनी स्पीड से गाड़ी क्यों चला रहे थे? फिर उसने निक के चेहरे की तरफ देखा जो गुस्से में लाल था। गुस्से से आपका चेहरा भी लाल हो गया और आपकी आंख, उसका ध्यान वहां पर गया जहां से पानी निकल रहा था। आपकी आंखों में पानी, वो निक के गले लग गया। भाई आप ठीक तो हो ना? जैन के गले लगते ही निक रोने लगा, जैसे उसे रोने के लिए कोई सहारा ही चाहिए था। क्या किया उसने ये सब? मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। भले ही मैं एली की जगह किसी को नहीं दे सकता, पर दोस्त तो थी ना वो मेरी, अपना समझा था मैंने उसे। और वो प्रियल, वो मिस्टर दत्ता की बड़ी बेटी है जो हमारे बीच रह रही है, ताकि हमारे बीच रहकर हमारी हर एक इन्फॉर्मेशन दत्ता तक पहुंचा सके। तुम जानते हो ना वो दत्ता कौन है? क्या किया उसने प्रियल, उसने क्या किया सब मेरे साथ? जैन ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा।
भाई आप संभाले खुद को, शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। जो भी चीज है हम उसे आराम से सुलझा लेंगे और बैठकर सुलझाएंगे। निक का रोना नहीं रुक रहा था। कोई गलतफहमी नहीं हुई, गलतफहमी ऐसे नहीं होती, कहीं भी कोई भी गलतफहमी ऐसी नहीं होती। दत्ता मेंशन में अभी भी एंगेजमेंट सेरेमनी में सभी फोटो सेशन करवा रहे थे। प्रियल और बाकी लोगों की फोटो कब की हो गई थी, अब दूसरे लोग अपना फोटो शूट करवा रहे थे। मिस्टर दत्ता की फैमिली में उनकी बहनें और छोटे भाई की पत्नी कोई भी प्रियल को पसंद नहीं करता था, वो उसे देखकर गुस्से में जल रहे थे। तभी मिस्टर दत्ता की बहन सुमन और छोटे भाई की पत्नी मीता दोनों प्रियल के पास आए। सुमन प्रियल के पास आते हुए बोली, प्रियल, उसने ताने मारने वाला अंदाज अपनाया, अब हम अपना रियल फैमिली फोटो सेशन करवा रहे हैं, तुम एक काम करो, जाकर खाना वाना खा लो या इधर उधर थोड़ा बहुत घूम लो। देखो कितनी कमजोर हो गई हो, लग रहा है मेरा भाई ध्यान नहीं रख रहा तुम्हारा, पता नहीं कहाँ क्या कमी रह गई। अब तुम यहाँ खाओ पियो और मोटी हो जाओ, मीता ने सुमन का साथ दिया और बात के मजे लेते हुए कहा। जीजी बहाने क्यों बना रही हो आप, सीधे कहो ना, तुम कौन सी अपनी है जो हमारे साथ फोटो सेशन में आओगी। ये तो अच्छा है भाई साहब ने इसे पाल लिया, वरना तो ये अनाथ ही। प्रियल को ये सब सुनकर दुख हुआ, पर उसने खुद को संभाला और कोई जवाब नहीं दिया, बस वो उदास होकर वहां से चली गई। प्रियंका जी वहीं थी, उसका ध्यान प्रियल पर पड़ा तो वो मीता और सुमन के पास आई। उन्होंने मीता से पूछा, मीता प्रियल को क्या हुआ, वो अचानक यहाँ से कैसे चली गई, चेहरा भी उदास लग रहा था। मीता जानती थी प्रियंका जी को प्रियल काफी प्यारी है, इसलिए वो बात बदलते हुए बोली, कुछ नहीं दीदी, उसकी ड्रेस पर जूस गिर गया था, शायद उसे ही साफ करने गई होगी, अच्छी ड्रेस थी तो इसलिए उसका चेहरा उदास हो गया होगा। प्रियंका जी ने उस तरफ देखना छोड़ा और कहा, तब कोई बात नहीं, चलो करके वापस आ जाएगी, चलो मैं फंक्शन की दूसरे अरेंजमेंट देख लूं। इतना कहकर वो वहां से चली गई।
प्रियल वहां से ऊपर अपने रूम में गई। रूम में जाते ही वो अपने सामान को इधर उधर करने लगी। उसने अपने सामान से अपने मम्मी पापा की फोटो निकाली और वो उसे देख कर रो पड़ी। रोते रोते वो बेड के ऊपर बैठ गई और फोटो को देखते हुए कहा, इससे तो अच्छा होता आप दोनों के साथ मैं भी इस दुनिया से चली जाती। आप सो चले गए लेकिन प्रियंका दीदी पर जिम्मेदारी का बोझ छोड़ गए। ये तो प्रियंका दीदी है, वरना इन लोगों का बस चले तो मुझे मार ही डाले। इन लोगों की वजह से मुझे कभी कभी फील होता है मैं अनाथाश्रम में ही रह लेती, कम से कम इन लोगों के झूठे एहसान तले दबना तो नहीं पड़ता। मैंने आज तक इनसे एक पैसा नहीं लिया, फिर भी पता नहीं किस बात का एहसान जताते हैं ये लोग, मुझे तिल तिल करके मारते हैं। उसने फोटो को सीने से लगाया और रोते रोते वहीं बेड पर दूसरी तरफ गिर गई। एक सुनसान जगह पर निक और जैन गाड़ी में बैठे थे। निक रोए जा रहा था और जैन उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर निक इसके बावजूद शांत नहीं हो रहा था। जैन ने दोबारा से कोशिश की और कहा, भाई बंद करो ना रोना, धोखा उसने दिया है, रो आप रहे हो, उसके किए की सज़ा आप अपने आप को क्यों दे रहे हो। निक बिना उसकी तरफ देखे बोला, गलत इंसान पर भरोसा किया तो सज़ा तो मिलनी ही है ना जैन, और भरोसा मैंने किया था तो मुझे ही सज़ा भुगतनी है ना इसकी। प्लीज़ भाई पैनिक मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, चलिए घर चलते हैं ना, एक बार के लिए सब बातों को भूल जाइए, थोड़ा सही हो जाइए, फिर इसके बारे में सोच लेना। निक अभी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो गाड़ी में ही जैन की तरफ हुआ और उसके गले लगकर रो पड़ा। जैन ने उसे सहारा दिया और कुछ देर के बाद खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। निक बेसुध वाली हालत में पहुंच गया था। जैन ने गाड़ी चलाई और उसे निक के घर की ओर कर लिया। निक के घर पहुंचकर वो निक को उसके कमरे तक लेकर आया और बेड पर बिठाकर उसे खाने पीने के लिए कुछ दिया। उसने खाना तो नहीं खाया मगर जूस का एक ग्लास पी लिया। जूस का ग्लास पीने के बाद जैन ने उसे नींद की गोलियां दे दी और फिर लेटा दिया। नींद की गोलियों की वजह से निक को जल्दी नींद आ गई। निक को सुलाने के बाद जैन बाहर झूले पर बैठा था, तभी अम्मा की गाड़ी घर के सामने रुकी। वो डॉक्टर दीक्षित के साथ यहाँ आई थी। जैन ने उसकी तरफ ध्यान दिया और फिर दोनों डॉक्टर दीक्षित के साथ निक के रूम में चले गए। एम्मा ने निक की हालत देखी तो तुरंत डॉक्टर दीक्षित को कहा, देखे ना अंकल कैसी हालत हो गई है इसकी, इसे पैनिक अटैक आते हैं, आप जरा देखें कहीं फिर से पैनिक अटैक ना आने लगे। डॉक्टर दीक्षित उसका चेकअप करने लगे। कुछ देर चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम लोगों ने इसे सुला दिया, थोड़ी देर आराम करेगा तो सब कुछ भूल जाएगा, माइंड पर इतना प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, इसे पैनिक अटैक आने का डर कम है, सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कंडीशन बिगड़ेगी। एम्मा के चेहरे पर अलग ही तरह का गुस्सा था। वो अपने इस गुस्से में बोली, एली तो चली गई पर निक अभी भी दर्द में है, पता नहीं क्यों निक इतने दर्द के साथ जी रहा है। और प्रियल मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मेरा यकीन मानो मैं तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर दूंगी, हमारे साथ ऐसा करके तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया और इसकी सज़ा मैं तुम्हें अच्छे से दूंगी। जैन एम्मा को गुस्से में देखकर उसके पास आया और कहा, एम्मा मैम मैं यहाँ पर हूँ भाई के साथ, भाई ऐसी हालत में है, ऐसे में इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी आपको ही संभालनी है, प्लीज़ आप जाएं और जाकर आराम करें, यहाँ की सब चीज़ों को मैं देख लूँगा।
एम्मा ने एक बार निक की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर एम्मा डॉक्टर दीक्षित के साथ वहां से चली गई। रात के लगभग 2 बजे निक की आंख खुली और वो उठ खड़ा हुआ। जैन उसके कमरे में ही सोफे पर सो रहा था। उसने नींद की गोली ली थी, मगर इसके बावजूद उसकी नींद पहले खुल गई। ये सिर्फ और सिर्फ उस दुख की वजह से हुआ था जिसे वो अभी भी अपने सीने में संभाल रहा था। निक धीरे से उठा और बिना कोई आवाज किए अपने कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर आने के बाद वो दबे पांव अपने घर में बनी लाइब्रेरी के अंदर गया। वहां उसने एक किताब को अंदर की ओर पुश किया, जहां लाइब्रेरी में बने एक खुफिया कमरे का दरवाजा खुल गया। ये रूम निक के लिए बहुत स्पेशल था। यहां पर निक और उसकी हर एक प्यारी याद सहेज कर रखी हुई थी। रूम के अंदर उसने अपनी माँ पार्वती और एली के साथ बिताए हर अच्छे मोमेंट्स की पिक्चर लगा रखी थी। कमरे में ही एक सेक्शन में कुछ कैसेट्स रखी थी जिसमें उसके बिताए हुए लम्हों की कुछ वीडियोस थी। उसने वहां से एक कैसेट निकाली और वहीं पड़े लैपटॉप में लगाकर उसे देखने लगा। वो वीडियो कुछ साल पहले की थी। निक एली और एम्मा के साथ था। एवा इस वीडियो को बना रही थी। वो लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे। एम्मा बॉल को दूसरी तरफ फेंकते हुए एली को बोली, एली तेरा ये बॉयफ्रेंड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एली ने हल्के व्हाइट कलर की क्रॉप टॉप और खुला पजामा पहन रखा था। वो अपने बोलने दिखने के तरीके इन सब में बहुत ही मासूम और अट्रैक्टिव लग रही थी। निक ने कूद कर बॉल को पकड़ा और कहा, एली तुम्हारी ये नकचढ़ी बहन बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, जैसे ये मुझे बहुत पसंद है। इसको पता नहीं कितनी बदतमीज है ये, इतनी बदतमीज कि इसे अपने होने वाले जीजू की भी रिस्पेक्ट नहीं। एम्मा निक के पास दौड़ी और बॉल को छीनकर दूसरी तरफ जाते हुए बोली, एली अगर तुमने इस बंदर से शादी की तो ना, तो देख लेना मैं तुम दोनों को कमरे के अंदर बंद करके ताला नहीं बिल्कुल अलग अलग बंद करके ताला लगाऊंगी। निक अपनी जगह पर खड़ा हुआ और हाथ कमर पर रखता हुआ बोला, ओए बंदर किसे बोला, तू ना पिटेगी मेरे हाथों से। एम्मा ने उसकी तरफ बिना ध्यान दिए कहा, तुम्हें और किसे, और कोई बंदर दिखाई दे रहा तुम्हें यहाँ पर, एली तुम कुछ बोलो ना इसे। तभी एम्मा ने वीडियो कैमरे की ओर देखा और अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज यार एवा स्टॉप शूटिंग, क्यों मेरी सड़ी हुई शक्ल को रिकॉर्ड कर रही हो। एली ने पहली बार कुछ कहा, मैं क्या बोलूं, तुम दोनों मुझे कुछ बोलने दोगे तो मैं बोलूंगी ना। अब सुनो एम्मा, तुम मेरे प्रिंस को कुछ मत कहो, तुम्हारे लिए मैंने जो जूजू ढूंढा है वो इस दुनिया में क्या, किसी और दुनिया में भी नहीं मिलने वाला। निक इज द बेस्ट लाइफ पार्टनर फॉर मी। एवा ने कैमरा रखा और दौड़कर एली के पास आई। एली ने उसे उठाया, जहां एवा ने उसके गाल पर किस कर लिया। निक भी उसके पास आया और उसे उठाते हुए उसके गाल पर किस किया। वो छोटी बच्ची थी। एवा के गाल पर किस करते हुए निक ने कहा, माई लिटिल डॉल प्लीज तुम अपनी छोटी बहन से थोड़ा दूर ही रहा करो, वरना तुम्हारी भी नाक मोटी हो जाएगी। मोटी नाक वाली लड़की को तो कोई लड़का भी नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा दोस्त जरूर मिल सकता जो थोड़ी बहुत केयर वेयर करेगा। एवा बच्चों वाली आवाज में मासूमियत से बोली, एम्मा की नोज मोटी है क्या, मैंने उसे कभी ध्यान से नहीं देखा। एली डांटते हुए आई और कहा, निक लगता है आज तुम सच में अपनी जिद तुड़वाना चाहते हो जो एम्मा की नाक पर कमेंट पास कर रहे हो। बोलने दो इसे, एम्मा बोली, शादी तो करने नहीं दूंगी इसे आपसे, बंदर कहीं का। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म हो गई। उसे देखकर निक के आंसू बहने लगे। वो वहां मौजूद कुर्सी पर बैठा और खुद को संभालते हुए कहा, बस बहुत हो गया, बहुत धोखा खा लिया मैंने और बहुत धोखा दे दिया तुमने। इंस्टीट्यूट को तुम जैसे धोखेबाज की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी फीलिंग में अ लिटिल बिट चेंज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ यू फॉस्टर। नाउ वेट एंड सी, अब मैं क्या करता हूँ। तुमने निक को प्यार वाला बर्ताव करते हुए तो देख लिया, अब उसका गुस्सा भी देखो।
सुबह होते ही निक जल्दी इंस्टीट्यूट के लिए निकल गया। ऑफिस में पहुंचा और वहां प्रियल के अगेंस्ट एक कंप्लेंट लेटर फाइल कर दिया। उस कंप्लेंट लेटर के साथ उसने उसकी एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच कर दिया ताकि उसकी एडमिशन रिक्वेस्ट कैंसिल हो सके और वो ट्रेनिंग सेंटर से ही बाहर निकाल दी जाए। उस कंप्लेंट लेटर के अनुसार प्रियल ने फेक आइडेंटिटी के साथ इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, जो इंस्टीट्यूट के रूल्स के खिलाफ था। उसमें ये भी लिखा गया था कि इसके लिए उस पर जुर्माना लगाया जाए और उसे कड़ी सजा भी दी जाए। ये सब करने के बाद निक ने खुद से कहा, बस 10 दिन, इस कंप्लेंट को प्रोसेस होने में 3 दिन का टाइम लगेगा, जिसके बाद 7 दिन तुम्हें खुद को सही गलत प्रूफ करने के लिए दिए जाएंगे। फिर तुम और तुम्हारे बाप को मैं बताऊंगा निक से पंगा लेने पर क्या होता है। ये कहकर निक ने उसे फैक्स कर दिया और फिर अपने दूसरे कामों में लग गया। उसने ये जो भी किया था ये सिर्फ अपने तक रखा था और वो आगे भी इसे किसी को नहीं बताने वाला था। प्रियंका जी के कहने पर प्रियल, प्रांजल और अर्जुन 2 दिन के लिए वहीं रुक गए थे। प्रियल वापस ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा पाई थी तो उस वजह से उसे किसी तरह का नोटिस नहीं मिला। उसके अगले 2 दिन जैसे तैसे बीते। निक ट्रेनिंग सेंटर में अभी भी प्रियल के आने का इंतजार कर रहा था। वो उससे जानना चाहता था कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। 2 दिन हो चुके थे लेकिन प्रियल अभी भी इंस्टीट्यूट वापस नहीं आई थी। वो बेचैन हो रहा था मगर वो खुद से भी कुछ नहीं कर सकता था। किसी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं, किसी तरह की दूसरी चीज नहीं। निक ट्रेनिंग सेंटर में एक बेंच पर बैठा था और दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी उसे आरोही दिखाई दी। वो प्रियल से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था मगर उसकी सहेली तो कर सकती थी। यही सोचकर वो उसकी ओर गया। निक उसके पास जाते ही बोला, हे आरोही कैसी हो तुम्हारी मिस शर्मा आ गई क्या।
आरोही अपना काम कर रही थी, उसने अपना काम करना थोड़ा और कहा। नो सर। ओ, निक बोला, तो तुमने कोशिश नहीं की उससे बात करने की, उससे बात करने की और ये पूछने की कि वो कब तक आएगी? फिलहाल तो नहीं, मगर आज शाम को या कल में वो आ जाएगी, उसने इतनी ही छुट्टियां ली थीं। इतना कहकर वो चली गई और अपने दूसरे काम करने लगी। निक उसके जाने के बाद खुद में सोचते हुए बोला, अच्छा हुआ नहीं आई, वैसे आएगी भी किस मुंह से, अब यहां वापस ना आए तो ही अच्छा है, बाहर से ही इंडिया चली जाए, इतनी कम उम्र में जेल जाएगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ना ही उसे ना ही प्रभास दत्ता को। निक प्रियल से गुस्सा था और वो उसे अपने चेहरे पर भी दिखा रहा था, मगर उसका दिल अभी भी उसकी एक झलक पाना चाहता था। वो अपने कमरे की ओर मुड़ा और कमरे में जाने लगा, तभी उसे रोहन का कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो सामने से रोहन बोला, हे भाई, क्या हाल है, सब खैरियत पानी तो है, और शादी कैसी लगी? निक मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन काफी बेहतरीन लगी, अच्छा हुआ जो तुमने उसका लाइव किया, मैं इस शादी को कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता। फिर उसने कहा, रही बात हाल की तो मेरे हाल तो ठीक है, पर किसी और के, उसने इतना ही बोला कि उसकी आगे की लाइन रोहन ने पूरी कर दी। वो बोला, बिगाड़ने वाले हैं यार डूड, तुम बिगाड़ते रहो जिसके हाल बिगाड़ने हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं और शालू कुछ दिन के लिए यहाँ रुक रहे हैं, एंगेजमेंट सेरेमनी तो तुम लोगों ने अटेंड की नहीं, लेकिन एक आधे दिन लंच तो साथ में करोगे ना? निक ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें दो दिन का इंतजार करना पड़ेगा, कुछ मामले बिगड़े पड़े हैं, दो दिन तक ठीक हो जाएंगे तो फुर्सत से और मजे से लंच करेंगे। रोहन ने ओके कहा और फिर फोन काट दिया। उसके फोन काटने के बाद निक फोन को अपने हाथ में घुमाता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे की ओर जाते वक्त वो फिर से बोला, पता नहीं कब आएगी, कब वापस आएगी मिस शर्मा। शाम की समय प्रभास दत्ता जी के घर पर प्रियंका जी प्रियल और अर्जुन को विदा कर रही थी। प्रांजल सालू और रोहन के साथ वहीं रुक रही थी, बाकी के गेस्ट पहले ही जा चुके थे। प्रांजल को रुकवाने के लिए प्रियंका जी को काफी मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाकर वो रुकने के लिए मानी थी, वरना वो नहीं मान रही थी। प्रियंका प्रियल को विदा करते हुए बोली, प्रियल अगर फंक्शन में किसी ने कुछ ऐसा वैसा बोला है तो उनकी तरफ से आई एम सॉरी, मुझे पता है हमारे रिश्तेदार तुम्हें पसंद नहीं करते, मगर इस बात को लेकर कभी दुखी मत होना। प्रियल मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए जो भी हो वो आप हो, बाकी मुझे किसी से और कोई लेना देना नहीं। प्रियंका ने आंखें टेढ़ी की और कहा, दीदी तुम्हें कितनी बार कहा है मम्मा बुलाया करो, और तुमने ही मम्मा कहने की आदत डाली थी। मैंने नहीं, प्रांजल से पहले तुमने ही मुझे मम्मा बुलाया था, प्रियल ने दोबारा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा। ओके मम्मा। प्लीज प्रियल शर्माना मत, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। इसके बाद वो बोली, और हो सके तो अमृतसर हो आना, नानी की उम्र हो गई है और ऊपर से बीमार भी हैं, तो एक बार मिल लेना। प्रियल ने हामी भर दी, ओके मम्मा मिल लूंगी। अर्जुन काफी देर से ऐसे ही बैग उठाकर खड़ा था, वो दोनों की बात खत्म होने और जाने का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक बात सुनते रहने के बाद उसने कहा, आप दोनों माँ बेटे की बातें खत्म हो गई हो तो चले, या अभी भी यहीं रुकने का इरादा है? प्रियंका जी बोली, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली, अपना ख्याल रखना प्रियल, प्रियंका जी ने कहा और फिर गले से लगा लिया। प्रियंका जी से विदा लेकर प्रियल और अर्जुन वहां से चले गए। अर्जुन ने वहां से एयरपोर्ट से इंडिया की फ्लाइट ली तो वहीं प्रियल कैब लेकर वापस ट्रेनिंग सेंटर के लिए चली गई। प्रियल ने पिछले कई दिनों से निक नहीं देखा था, फंक्शन का काम खत्म हो गया तो वो वापस निक के बारे में सोचने लगी। उसका दिल निक को देखने के लिए तरस रहा था, मगर वो नहीं जानती थी अब हालात बदल चुके हैं।